मैं समय जेएनयू के कुछ छात्रों के साथ खड़ा हूं और वो पॉलिटिकली बहुत एक्टिव भी हैं। कई लोग हैं, जयंत हैं, कुणाल हैं, वलीउल्लाह कादरी साहब हैं, सनी हैं, आप अमित हैं। तो अभी कन्हैया आए हैं जेल से, उनको जमानत मिली है। तो जो कन्हैया ने एक स्पीच दी अभी यहाँ पे, तो अमित आप सबसे पहले, आपके सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या था
कन्हैया का जो स्पीच है? पूरे देश के अंदर जो सबसे खास जो महत्वपूर्ण इशू है जो हम लोग खासकर जेएनयू के छात्र लड़ते हैं, जो कहा जाता है बार बार कहा गया मीडिया के द्वारा आप टैक्स यूज़ करते हैं, तो हम उसी किसान जो टैक्स पे करते हैं, हम उसी किसान की भाषा में बोल करके, उस किसान की बात को करके हम पूरे देश को पहुँचाना चाहते हैं, एक समन्वय बनाना चाहते हैं, किसान, देश की सेना और जेएनयू का छात्र।
सनी, मैंने आपको देखा था कि आप एक तिरंगा झंडा लहरा रहे, तो जेएनयू में मैंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा, तो इसकी कोई खास वजह थी?
इसकी खास वजह ये थी कि क्योंकि हमें बदनाम किया जा रहा था हमारे की इंस्टीट्यूशन को, हम उस तिरंगे को अपने साथ लेकर, वो जो तिरंगा जो 150 साल के स्ट्रगल का पार्ट रहा है, उनके बीच में लेकर हम कन्हैया के साथ खड़े थे।
वलीउल्लाह साहब, आपके हिसाब से जो पूरी स्पीच थी उसमें प्रधानमंत्री के बारे में भी चुटकी ली है, स्मृति ईरानी जी पे चुटकी ली है, तो कहीं से भी ये नहीं लग रहा था कि कन्हैया डरे हुए हैं जेल से लौटने के बाद?
देखिए, कन्हैया ने ये निश्चित तौर पर अपनी स्पीच में सारी बात रख दी कि हम कोई जेल और उनके केसों से डरने वाले लोग नहीं है। जो सवाल उन्होंने उठाया था कि जो मुद्दे उन्होंने रोहित वेम्बला का हो, चाहे जातिवाद का हो, चाहे संघ परिवार की जो इस देश के अंदर एक राजनीति है उसके खिलाफ जो लड़ाई थी, उसको दबाने की जो साजिश हो रही उसके खिलाफ कन्हैया खड़े हुए थे। जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर झूठ बोला गया, श्रीमती ईरानी जी ने जो बोला झूठ, उस झूठ को उन्होंने पर्दा साफ किया है।
कुणाल, आपको भी लगता है क्या कि ये जो पूरी की पूरी स्पीच थी वो एक स्टूडेंट लीडर की स्पीच नहीं थी बल्कि एक विपक्ष के नेता के जैसी स्पीच थी?
देखिए, ये स्टूडेंट लीडर का ही स्पीच था, लेकिन उसने वो सारे चीज को अपनी बातों में रखा जो वो खुद महसूस कर रहा था, जो देश के जनता के साथ, देश के स्टूडेंटों के साथ, अलग अलग यूनिवर्सिटियों में जिस तरह से स्कॉलरशिप में फंड कट हो रहे हैं, सेना के मुद्दे पे उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा है, इमोशनली लोगों को देश के बारे में कि राष्ट्रवाद और एंटी नेशनलिस्ट के का टैग जेएनयू के ऊपर लगाया जा रहा है, जेएनयू को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, उन सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने अपनी बातों में रखा।
जयंत, आप मीडिया के छात्र हैं, एमफिल कर रहे हैं, मैं ये जानना चाह रहा था कि मीडिया पे भी बहुत चुटकियां ली हैं, लेकिन मैं ये भी देख रहा था कि जब ये भीड़ आ रही थी गंगा ढाबा से, तो बड़ी मात्रा में छात्र जो एक बड़े रिपोर्टर थे तो उनके कैमरे के पास चले गए, तो क्या मीडिया कई तरह से नहीं इंपैक्ट कर रहा है जेएनयू के इस पूरे आंदोलन को?
देखिए, आज के मौजूदा दौर में मीडिया बहुत सारी चीज़ों को तय कर रहा है, एक विमर्श खड़ा करने में वह उसको मैग्नीफाई भी कर रहा है,
गलत हो या सही,
बिल्कुल उसको डिस्टोर्ट भी कर रहा है, तो उसकी जो एक बेहतरीन ढंग से उसका इस्तेमाल जो किया जा सकता है विवेकपूर्ण ढंग से, वो एक अच्छी दूरदर्शी समझ वाला नेता जानता है।
कादरी साहब, आप बताइए कि क्या जेएनयू को भी थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है?
कन्हैया ने अपनी स्पीच में साफ कह दिया था कि जो भाषा हम बोलते हैं वो आम आदमी तक जा नहीं पाती है, जो हम कैपिटलिज्म को लेकर, चाहे यहाँ पर विचारों का, अलग अलग विचारों की तो बात होती है, लेकिन वो विचार किस तरह से उन लोगों तक पहुँचे जो आम भाषा बोलते हैं, तो थोड़ी सी भाषा के अंदर भी तब्दीली लानी चाहिए और लोगों तक पहुँचे ऐसी भाषा का इस्तेमाल भी हो, ये चाहते थे।
लेकिन अमित, आपको नहीं लगता कि भाषा के अलावा भी जेएनयू को कुछ कुछ बदलने की ज़रूरत है?
किसी चीज़ को बदलने की ज़रूरत नहीं है, हमें जनता की भाषा में जनता को, जनता के मुद्दों को समझाने की ज़रूरत।
तो अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि जेएनयू जो स्टूडेंट यूनियन है उनकी क्या रणनीति होती है इस पूरे मामले को लेकर या जनता तक पहुंचने को लेकर। लेकिन इस पूरे डिबेट में एक बात कई छात्र ये भी मान रहे हैं कि जेएनयू के इस मूवमेंट को ही नहीं बल्कि पूरे जेएनयू को भी सोचने की ज़रूरत है कि वो जो बात कहते हैं क्या वो वैसी ही पहुँचती है आम जनता तक या नहीं पहुँचती है। सुशील झा, BBC दिल्ली।